यूनिट 21 उर्दू। जब 11वीं और 12वीं सदी में मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो ज़्यादातर उस इलाके में रहे जो लाहौर से लेकर दिल्ली, आगरा और मेरठ तक फैला हुआ है। उस वक्त दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बांगड़ू और खड़ी बोली बोली जाती थी और आगरा के पास ब्रज भाषा बोली जाती थी। बाहर से आने वाले ये मुसलमान तुर्की या फारसी बोलते थे। मुसलमान बादशाहों की सरकारी ज़बान फारसी थी, मगर ज़िंदगी और हुकूमत की ज़रूरतें उन्हें आम लोगों की ज़बान सीखने पर मजबूर कर रही थीं। इसी तरह मकामी लोगों के लिए भी ज़रूरी था कि वो नए आने वालों की बात समझ सकें और उन्हें अपनी बात समझा सकें। बादशाहों और उनके दरबार और फौज से दूर मुसलमान फ़कीरों का एक गिरोह था जो अपना पयाम मुल्क के आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था। ये लोग तुर्की, अरबी और फ़ारसी के आलिम तो थे ही, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने संस्कृत और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें सीखना शुरू कीं। इसी तरह के मेल जोल से शुमाली हिंद में एक नई ज़बान बनना शुरू हुई। 13वीं सदी में हमको इस खड़ी बोली और फ़ारसी मिली हुई ज़बान में कुछ जुमले मिलते हैं। उस ज़माने में इस ज़बान को हिंदवी कहते थे। उसकी ग्रामर हिंदुस्तानी थी, मगर फ़ारसी का गहरा असर था। इस सदी में मुसलमान फ़ौज के साथ ये ज़बान दक्कन पहुंची। कुछ सालों के बाद दक्कन के मुसलमान बादशाहों ने उसको अपने दरबार में जगह दी और यही मिली जुली ज़बान दक्कनी के नाम से वहाँ की सरकारी ज़बान बन गई। दक्कन में इस ज़बान ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की। शाहजहाँ के ज़माने में दिल्ली दोबारा राजधानी बनी और आम बोलचाल में ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली का रवाज बढ़ा। दिल्ली में फ़ारसी और खड़ी बोली मिली हुई ज़बान का नाम पहले रेख्ता और फिर उर्दू पड़ा। उर्दू और दक्कनी एक ही ज़बान की दो शक्लें थीं। चुनांचे जब दक्कन की मुसलमान सल्तनतें ख़त्म हो गईं और दिल्ली हुकूमत और तहज़ीब का मरकज़ बनी तो दक्कनी की अदबी हैसियत ख़त्म हो गई और उर्दू ही शेर व अदब की ज़बान मानी गई। कुछ ही दिनों में ये ज़बान हिंदुस्तान के सारे इलाक़ों में फैल गई। अंग्रेज़ों के ज़माने में उर्दू सरकारी ज़बान भी बन गई। सन 1947 ईस्वी के बाद से उर्दू पाकिस्तान की एक सरकारी ज़बान है और बहुत तरक्की कर रही है। हिंदुस्तान में भी ये अब भी बोली और समझी जाती है और हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ इसके बड़े मरकज़ हैं।